इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखी जाएगी तेरी कहानी। कैसे प्रभु को सौंप दी तूने पूरी अपनी जिंदगानी। सच्चाई सफाई सादगी का नारा लगाकर भारत की बढ़ाई तूने शान। इस धरती को गुलिस्तां बनाया तू है शाने हिंदुस्तान। कभी दुर्गा कभी शीतला बन वरदानों की वर्षा की। मात्र प्रेम लुटाया सब पर है रूहानी पालना की। तेरी शिक्षाओं की कुंजी ब्रह्मा वत्सों द्वारा पाई है। तेरी यादों को संजोकर एक नई माला बनाई है। एक नई माला बनाई है। एक नई माला बनाई है। कंपेनियन ऑफ गॉड दादी जानकी।
गंगा सी शीतल पावन पाप धोती नदियां हैं ये। तार दे सबका जीवन कुल का उद्धार करती बेटियां हैं ये। शहद की तरह मीठी हस्ती खिलखिलाती कलियां हैं ये। वक्त को भी मात देती कभी न थकती जवानियां हैं ये। जान गई जिन्हें अब सारी दुनिया ऐसी हमारी दादियां हैं ये। नमस्कार ओम शांति। आप सभी दर्शकों का कंपेनियन ऑफ गॉड दादी जानकी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय भाई बहनों, वंदे मातरम का नारा पूरे भारतवर्ष में बड़े जोश और उल्लास के साथ आज भी बोला जाता है। सचमुच कितनी वंदनीय होंगी वो माताएं बहनें जो अपने त्याग मेहनत और तपस्या के बल पर किसी का जीवन संवार देती हैं। इसलिए आज का एपिसोड बहुत स्पेशल है क्योंकि आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी हस्ती से कराएंगे जो खुद इस संस्था का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है और जो हमारी दादी जी की पुरानी सखी और सहेली भी हैं। तो आइए हम सब मिलकर स्वागत करते हैं आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी डॉक्टर दादी रतन मोहिनी जी का। दादी इस संस्था की आदि रतन है और वर्तमान में इस संस्था की एडिशनल चीफ भी हैं। दादी जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हमारा सौभाग्य है जो आप हमारे पास यहाँ पधारे हैं। हम आपसे आज बहुत सारी गहरी बातें निकलवाएंगे, आपसे जानेंगे समझेंगे। तो दादी जी सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि जब शिव बाबा की पद्रामणि हुई और बाबा ने ये ज्ञान देना शुरू किया और एक संस्था का नाम उस समय शुरू में संगठन का नाम ओम मंडली रखा, तो आपको कैसे पता चला और आप कैसे इसके साथ जुड़े?
बाबा का जो सत्संग चलता था
जी
वो तो कुछ समय से जनरल चलता था
जी,
और हम तो स्कूल में पढ़ती थी
जी।
माता जी कभी कभी जाती थी
जी जी,
तो इसलिए हम भी जब स्कूल में पढ़ के
जी
और जब आगे के क्लास में जाना था तो वो स्कूल में जगह नहीं मिली।
अच्छा,
तो हमने सोचा इस भटकने से तो अभी हम चले जाते हैं बाबा के पास
जी।
ऐसे करते फिर हम माँ के साथ उधर सत्संग में आने लगे
जी जी।
और जैसे ही आने लगी तो जब हम सुनने बैठी
जी
तो उस समय अचानक, मुझे भी पता नहीं
जी जी,
लेकिन अचानक सुनते सुनते मैं जैसे गुम हो गई
जी,
जिसका हमें भी पता नहीं
जी।
गुम होने में कुछ मैंने देखा नहीं परंतु कंप्लीट साइलेंट, अंदर में कोई भी संकल्प नहीं चलता था। और एक अंदर में खुशी होती जाती थी, ऐसे लगता था जैसे कि मैं बाबा से मिल रही हूँ।
जी जी जी।
काफ़ी समय मैं बैठी रही, सभा चली गई, मुझे उनकी कोई जानकारी नहीं, लेकिन काफ़ी समय के बाद जब मैं उठी तो इधर उधर देखने लगी, कोई नहीं है और मैं अकेली हूँ, तो ज़रा सोच में शांति में फिर से बैठ गई।
जी।
फिर कुछ समय के बाद मैं उठी और जाने लगी तो मेरे से पूछने लगे क्या हुआ। मैंने कहा नहीं, मैं बाबा से मिल रही थी। ऐसे करके पहले दिन तो मैं ऐसे ही चली गई। फिर जब दूसरे दिन आई तो मुझे भी इंटरेस्ट हुआ।
हाँ जी।
और मैं बड़ी शांति से बाबा का सुनती रही और बाबा ने अपने पास क्लास के रीति से जैसे कि स्कूल
जी जी
खोला था।
हाँ, वही हम पूछना चाहते थे, जैसे बाबा ने हॉस्टल खोला था तो फिर आप उस हॉस्टल में आप पढ़े जो बाबा ने खोला था।
क्योंकि जब हम ऐसे आए तो किस हिसाब से हम आवे इतनी
जी,
छोटी।
जी जी
तो बाबा ने जैसे कि अपने पास ही स्कूल खोल दिया।
जी।
स्कूल के नाम से नहीं, परंतु उधर ऐसे क्लास लगता था
जी।
तो हम फिर उस क्लास में बैठी।
तो आपकी उस वक्त कितनी उम्र रही होगी दादी?
अभी मुझे आयु तो पक्की याद नहीं है
जी,
क्योंकि पढ़ाई तो पढ़ती थी और मैं उस समय 6 या 7 क्लास में थी।
अच्छा, काफी छोटे थे तो फिर
तो जब हमने देखा इधर क्लास चलती है तो हमने घर में यही बताया कि वहाँ स्कूल है
जी,
और वहाँ बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो मेरी दिल है वहाँ पढ़ने की।
जी।
ऐसे कह के मैं अभी जैसे कि छुट्टी से वहाँ रोज जाती।
जी। फिर आपने
माता जी तो आती
आपने
थी।
माता परिवार को छोड़ के फिर बाबा के साथ कब रहना शुरू किया?
वो तो कुछ समय के बाद ही हुआ क्योंकि जब तक माता जी थी तो माता जी को तो साथ देना ही था।
जी।
आते जाते थे।
जी।
परंतु जास्ती देर नहीं, फिर जल्दी आ गई।
जी।
घर में ये तो हम स्कूल में जाते हैं।
अच्छा।
क्योंकि स्कूल में जब जगह नहीं मिली तो भटकते भटकते कहाँ जाएं, तो हम इस स्कूल में जैसे कि आ गई। नहीं तो घर से छुट्टी नहीं मिलती थी। तो हमने कहा हम स्कूल में जाती है और स्कूल में हमारी ये पढ़ाई है।
जी।
तो वो पढ़ाई पढ़ते रहे और कुछ समय ऐसा चलता रहा।
तो विशेष क्या शिक्षाएं थी जो आपको बहुत इम्प्रेसिव लगी, बहुत अच्छी लगी वहाँ पर?
माना हम जो बाबा सुनाते थे तो सुनने से बड़ी शांति लगती थी और हम बड़े ध्यान से सुनते थे।
जी।
और हम देखती थी कोई कोई ध्यान में चली जाती है।
हाँ हाँ।
तो वो भी एक इंटरेस्ट की बात थी।
हुँ.
तो क्या है क्या नहीं है, परंतु हम फिर उन बातों में जाती नहीं, जैसे पढ़ने के लिए आई फिर चली गई। ऐसे कुछ समय तो ऐसे आती रही।
जी।
जैसे कि मैं दूसरे स्कूल में जाती हूँ और पढ़ाई पढ़ती हूँ, घर में ऐसी खबर थी।
तो दादी जानकी जी जब आए थे तो वो
उस समय दादी जानकी नहीं थी। दादी जानकी तो बहुत दूर देरी से आई।
अच्छा, तो दादी जानकी कब आए और आपसे मतलब कब उनकी मुलाकात हुई?
क्योंकि उस समय हमारा ये ध्यान ये नहीं रहता था, हम संबत देखें, दिन देखें, क्या देखें। जब पता चला गए और उसको इस संबत में हमारा कोई संबंध ही नहीं, तो हम उन बातों को देखते नहीं थे। परंतु शुरू शुरू में अजन बाबा ने समझो क्लास चलाया
जी,
था।
जी, जी।
क्लास के रीति से कुमारका दादी, दीदी मनमोहिनी बड़ी, ऐसे 3-4 दादियाँ थी जो क्लास बहुत करके कुमारका दादी कराती।
जी जी।
परंतु पढ़ते हम यही जो बाबा डिस्कोर्स देते थे वो हमको क्लास में पढ़ाया जाता था।
जी।
जिस कारण वो हमको बहुत अच्छा लगता था और याद भी बड़ा जल्दी पड़ जाता था। फिर ऐसे सुनते सुनते मेरे को ख्याल आया मैं लिखती हूँ, देखो मुझे लिखने आता है।
जी जी,
तो बाबा का सुनाना मेरा लिखना ये सज अनायास होता रहा। बाबा को ये पता नहीं चला कि मैं लिखती हूँ। उस समय बाबा हम उस संबंध से नहीं गए थे।
अच्छा।
जैसे हम उस क्लास में पढ़ने के लिए आई हूँ।
अच्छा।
इस रीति से आते थे और फिर जाते थे।
जी।
कुछ समय ऐसा चलता रहा।
जी, जी।
मुझे अभी पक्का याद नहीं है कितना समय, पर कुछ समय ऐसे चलता।
जी।
फिर स्टैंडर्ड बदलता है ना।
हाँ जी।
तो इस स्कूल में तो स्टैंडर्ड बदलेगा नहीं।
जी बिल्कुल।
तो फिर आकर मैं मतलब वहाँ चलते चलते ये बढ़ता गया, सत्संग बढ़ता गया।
हाँ जी।
लोग
तो शुरू
आते
में कितने
गए,
लोग थे और फिर बाद में कितने लोग हुए?
मेजॉरिटी माताओं की थी।
हाँ जी।
भाई नहीं इतने आते थे।
जी जी
मेजॉरिटी माताओं की थी। और फिर हमारे जैसी बहनें थी
जी
घर
जी
में रहने वाली।
जी
काफी समय मतलब ये चलता रहा।
जी
दुनिया को ये मालूम नहीं पड़ा कि इतने सत्संग है, ऐसा होता है, ये होता है। वो समझते थे सत्संग में गए हैं तो खुशी से छुट्टी मिलती थी, मैं पढ़ाई पर जाती हूँ।
आज काफी समय के बाद जब दादी आए तो वो अपना फैमिली छोड़ के आए थे बाबा के पास, तो उनकी तरह और भी माताएं थी जो अपनी फैमिली छोड़ के आई, तो आप देखते थे कि उस समय पिकेटिंग हुई और बहुत सारे लोग विरोधी बने, तो
माना ये
वो
काफ़ी समय के बाद हुआ,
जी जी
परंतु समझो आवाज़ तभी पड़ा जब हम जास्ती आने लगे
हाँ
और फिर धीरे धीरे वहाँ ही रहने लगे, तब आवाज़ समझो होने लगा। फिर
अच्छा।
बाबा हैदराबाद छोड़ के कराची में आ गया।
जी जी
तो
जी
उस समय हम कहेंगे हम क्या रहे, तो छुट्टियाँ लेके अपने घर से
हाँ
कराची चले गए।
जी। तो बाबा ने जो 14 साल आप सबको तपस्या कराई, उसका लक्ष्य क्या था, वो क्यों कराई बाबा ने?
वो तो लक्ष्य तो हमें यही मिलता था, तुम याद करो मैं कौन हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ, ऐसे अपन को समझ करके शांति में बैठ जाओ। तो हम शांति में बैठ जाते थे और अंदर में जैसे कि हम भगवान से बात करते हैं, कौन भगवान है, क्या रूप है, उस बात का चिंतन नहीं।
और बाहर की दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं होता था, मतलब कोई भी बाहर नहीं जाता था, जहाँ आप रहते थे वहाँ से बाहर नहीं जाते थे?
नहीं, शुरू में तो जाते थे, जाते
हाँ,
आते
हाँ,
थे।
हाँ,
जब बाबा कराची में चले तो फिर कहाँ
जी
जाएंगे,
जी जी
तो वहाँ ही रहे।
तो जब पार्टीशन हुआ, क्योंकि ये हैदराबाद सिंध की बात है, जब इंडिया और पाकिस्तान नहीं बने थे, अलग अलग नहीं हुए थे, तो ये पार्टीशन से पहले की है, तो जब पार्टीशन हो रहा था, पाकिस्तान एक नया देश बन रहा था, तो उस समय क्या अवस्था थी सभी की?
उस समय तो हम अंदर थी ना वो मंडली में,
जी जी जी
क्योंकि वहाँ ही पढ़ने आती थी तो वहाँ ही समझो रहती थी।
तो सभी जो भी यज्ञवत्स थे, तो बाबा ने उनको किस तरीके से उनकी उनको मेंटली प्रिपेयर किया ऐसी परिस्थिति के लिए? जैसे बाबा कहते थे कि विनाश भी सामने खड़ा है, मौत सामने खड़ा है, बाबा ऐसे कहते थे, तो सभी को बाबा, सभी को इतने सारे लोगों की पालना बाबा कर रहे थे, तो बाबा क्या कहते थे उस समय?
बाबा तो कुछ नहीं कहते थे, बाबा तो समझो अपना हैदराबाद छोड़ के कराची आ गए, हम कहाँ
जी
जाएं।
जी जी
तो हम भी कराची चले गए। फिर बाबा ने क्या किया, देखा ना इतनी सब माताएँ आती है और फिर थोड़ा घमसान भी होता है,
जी
तो बाबा ने एक अलग मकान ले लिया।
जी
जैसे माताएँ आपस में मिलकर के सत्संग करती है, उसमें मेरा क्या,
जी
मेरे से क्यों पूछते हो, उन्हों से जाके पूछो।
जी जी उनका हेड मम्मा को बनाया गया।
तो इसी रीति से समझो चलता रहा। तो समझो पहले शहर में इतनी पता नहीं थी कि ये सत्संग चलता है, ऐसा होता है, ये होता है। जब बढ़ता गया हम लोग फिर घर छोड़ने लगे और उधर ही रहे।
हाँ जी।
माताएं माना हमारी माता जी घर में रही और हम उधर रहे, तो इसलिए पीछे थोड़ा थोड़ा मतलब आवाज होने लगा।
जी।
तो तो दुनिया पहले पूछती देखती थी ये तो आके, हम तो कहते थे हम तो पढ़ने जाते हैं, देखो हमारी ये पढ़ाई बोर्ड पर लिखा हुआ किताब है, ये हमारी पढ़ाई है, तो उन्हों को बोलने का कोई चांस ही नहीं। फिर कुछ समय, काफ़ी समय ऐसा चलता रहा, क्योंकि कई बांदेलियाँ भाग के आती थी, ये करती थी, तो वो फिर जावे कहाँ, तो अलग मकान उसको लेके दिया, तो बाबा कहते हैं उन्हों से जाके पूछो वो उधर है
जी,
हमारे
जी,
पास थोड़ी है।
हाँ जी,
मतलब शुरू की कहानी तो बड़ी ही वंडरफुल है, जो बताने में भी इतना हिस्ट्री नहीं आती है क्योंकि बहुत बरस हो गए।
जी जी जी।
लेकिन इसी प्रकार से सत्संग बढ़ता गया, और जब फिर पिकेटिंग होने लगी, कोई हमको अंदर जाने नहीं देते थे, तो हम बाहर खड़े रहते थे, तो आवाज़ होने लगा कि भाई ये इसके पास ऐसा सत्संग होता है, माताएं बहुत जाती हैं, और इस रीति से वो उन्होंने कोशिश की, परंतु वो उसमें सफल नहीं हुए। वो कहते थे हम सत्संग में जाते हैं, इसको हमको थोड़े ही रोकते हैं, हम सत्संग में जाते हैं, हम अलग काम करते हैं, वो अपना काम करती थी।
जी, जी,
उन्होंने स्विंग क्लास खोल दिया और वो सर्विस करके हम चलते हैं, और हमको ये सत्संग में जाना है।
जी,
फिर घर वाले भी जास्ती क्या करेंगे।
जी, जी,
बाबा कराची आ गए, हम भी भाग के कराची में आ गए। वो कहाँ तक हमको कराची हैदराबाद से बोलते रहेंगे और बुलाते रहेंगे, तो वो भी आकर चुप करके बैठ गए।
जी,
आखिर मतलब ऐसे चलता रहा, हमारा सत्संग बढ़ता गया, जो कुमारियाँ थी वो आती रही। जब बहुत बढ़ गया तो कुमारियों को बंद करने लगे, वो भागती भागती आई, तो आवाज़ जास्ती फैलने लगा।
फिर जैसे बाबा शिव बाबा ने कहा कि अभी आपको भारत जाना है, बाबा को कहा कि अभी आपको भारत जाना है, क्योंकि मैं भारत में आता हूँ, मेरा जन्म स्थान भारत है, तो ऐसा बाबा ने क्यों कहा? क्योंकि आप कराची में थे, सब कुछ अच्छा से वहाँ चल रहा था, फिर थोड़ा सहयोग भी फिर आपको मिलना शुरू हो गया था, तो भारत में फिर बाबा ने आने का फैसला क्यों किया?
अभी बाबा तो थोड़ा समय तो रहा
जी
भारत में, बाबा ने जब से भारत छोड़ा तो फिर भारत में गया नहीं।
जी जी जी।
क्योंकि बाबा का फिर इधर सत्संग चला, हम लोग भी वहाँ थे
जी।
और बाबा आते थे, जो आते थे, भाई तुम अपनी बेटी से पूछो, वो चले तो भले ले जाओ।
हाँ जी।
मैं उनको नहीं ले आया हूँ, अभी वो चले तो ले जाओ, उसको सत्संग अच्छा लगता है तो उसमें हम मना क्यों करेंगे।
जी जी जी।
इस रीति सत्संग बढ़ता गया, हमने हैदराबाद छोड़ दी
जी,
बाबा ने भी हैदराबाद छोड़ दी
जी,
और कराची में अपना सत्संग किया। वहाँ हमको बहुत बड़ा बंगला मिला था
जी जी,
उस बंगले में रहते थे जो उसके सीढ़ी के वो मतलब आगे थे।
कराची से माउंट आबू का सफर कैसे तय किया आप सभी ने?
फिर काफी समय हम उसे वहाँ ही रहे ना, हैदराबाद छोड़ दी,
हाँ जी,
कराची में आके रहे, कराची में स्थान मिलना चाहिए, और फिर देखा तो ऐसा है, फिर किसने कोई, जैसे साधु महात्माएं होते हैं ना, तो उन्होंने राय दी तो आप अबू में चले जाओ,
अच्छा जी,
वहाँ आपको अच्छा रहेगा।
अच्छा।
फिर अबू में आने के बाद तो वहाँ कौन आएगा लेने के लिए?
जी जी जी।
जो भी माताएं वगैरह भाग के आई वो वहाँ ही आके रहती थी, भाई वो अपना काम करती है, मशीन चलाती है, अपना पालन करती है, हम तो उसको कुछ नहीं बिठाया, हम तो बोलते हैं भले ले जाओ, चले आपसे तो ले जाओ
जी।
इसलिए वो इस बात में भी फिर जास्ती हमको नहीं बोल सकते थे। हम कुछ बहने जो हैदराबाद से आई वो बाबा के साथ रहती थी,
और
पीछे पीछे जो धीरे धीरे आते गए, तो बाबा ने उनको अलग मकान लेके दिया था
जी,
तुम तो उधर अपना स्विंग क्लास करो और अपने को चलाओ।
दादी एक गीत जो है ना, जो सभी मिलकर के माताएं बहनें गाते थे उस समय, तो वो गीत के बोल हम आपके मुख से सुनना चाहते हैं, क्योंकि सब लोगों के अंदर नशा बहुत होता था, तो वो नशे से वो माताएं और बहनें गीत गाते थे, ना हम तुमसे जुदा होंगे, ना
कौन सा गीत था?
ना हम तुमसे जुदा होंगे, तो वो गीत आप हमें गा के सुनाइए, ना कुछ पंक्ति उसकी।
ना हमसे जुदा होंगे, ना उल्फत दिल से निकलेंगी, बड़ी है याद दो दिल जो दिल में,
भरी है याद जो दिल में,
बड़ी मुश्किल से निकलेंगी
जी,
तो अब हम कहाँ जाएंगे।
जी जी,
इसलिए हम अपना काम करते हैं, हमने बाबा को निश्चिंत कर लिया और फिर हम रोज आते भी थे, फिर तो कराची में आ गए तो सवाल ही नहीं कौन आएगा हमको लेने।
जी,
फिर वहाँ भी उन्होंने पिकेटिंग की, बाहर खड़े हो गए 12 बजे 2 बजे तक खड़े रहे
जी दादी,
2 बजे तक, आकर वो भी तो थक जाएंगे।
हाँ जी,
हमको तो अपना घर था,
है ना, परमात्मा में बहुत दृढ़ निश्चय था कि कोई कुछ कर नहीं पाया,
और हुआ भी ऐसे ना
जी दादी,
वो क्या कर सकते हैं
जी,
इसलिए हम खड़े रहते थे, भले आपको पिकेटिंग करनी है तो कर लो,
जी
हम वहाँ जाएंगे ही, आप इसमें क्या करेंगे, हमको पसंद है,
हाँ जी,
इसलिए आप जास्ती तंग नहीं करो
जी।
फिर वो भी देखते थे, ये मानते नहीं है, ठीक है, उनको सत्संग पसंद है तो करते रहे
जी,
ऐसे करते बाबा का सत्संग शुरू हो गया
जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दादी, हम यहीं पर ही ख़त्म नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो सिर्फ एक एपिसोड है, लेकिन हमारी आगे और भी कड़ियाँ हैं और भी हम आपसे जानना चाहते हैं, पर समय की सीमाएं हैं। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं दादी, आप हमारे साथ यहाँ पे आए और इतनी सारी अनुभव की बातें शेयर की। दर्शकों, तो आपने देखा कि जिस प्रकार हमने रामायण में देखा है कि श्री राम, श्री सीता, श्री लक्ष्मण भी 14 साल के वनवास पर गए थे और रावण को पराजित करके अयोध्या लौटे थे, उसी तरह हमारी इन दादियों ने भी बाबा के साथ 14 वर्षों तक दुनिया से अलग होकर अखंड तपस्या की, जिसका फल आज हम सभी प्रत्यक्ष रूप में देख रहे हैं। परंतु यह कड़ी यहाँ समाप्त नहीं होती है, क्योंकि कहानी अभी अधूरी है। दादी जी तो अनुभवों का भंडार है, हम दादी जी के जीवन की और विशेषताओं को जानते रहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से। आज के लिए इतना ही, आज्ञा लेते हैं, नमस्कार, ओम शांति।